आज है 11 अगस्त दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में पेश किया जीएसटी बिल।
एक केंद्रीय मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों का विषय तो एक बहाना था, कांग्रेस को केवल जीएसटी को रुकवाना, और कांग्रेस पार्टी क्योंकि देश के आर्थिक प्रगति नहीं चाहती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं।
लेने का अधिकार वाला दौर है, ना कि सरकार को नागरिकों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके फिर उसका पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसका दुरुपयोग किस तरह से करेंगे, सबका डर यही है।
पुलवामा में कल से जारी मुठभेड़ में दो चरमपंथियों की मौत। बिहार में 141 साल पुराना अखबार बिहार हेराल्ड फिर से हुआ शुरू। सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच आज सरकार ने जीएसटी विधेयक पेश कर दिया, लेकिन विधेयक पेश होने के बाद कांग्रेस के जोरदार हंगामे के कारण राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी और इसके लिए उसके पास सभी राजनीतिक और संवैधानिक विकल्प खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दोनों मकसदों के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड की जानकारी सरकारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगी। ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के साथ तीसरे बेलआउट समझौते के लिए तैयार हो गया है। यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता का कहना है कि इसकी शर्तों पर एक बार यूरोजोन के नेता चर्चा करेंगे और उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके तहत ग्रीस को 94 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाना है। जापान ने फुकुशिमा हादसे के बाद बंद पड़े रिएक्टरों में से एक को आज फिर से चालू कर दिया। दक्षिणी जापान के सेंदाई संयंत्र के इस रिएक्टर को भारी सुरक्षा के बीच चालू किया गया। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशुहिदे सुगा का कहना था कि यह सरकार की ऊर्जा नीति का एक हिस्सा है। ऊर्जा आपूर्ति नीति के तहत प्रधानमंत्री शिंजो अबे प्रशासन ने इस योजना को मंजूरी दी है। रिएक्टर को चालू करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके लिए न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने अपनी स्वीकृति दी थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा उतरता है। उसके बाद ही संयंत्र को चालू किया गया है। ये थे जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशुहिदे सुगा के शब्द। जापान में साल 2011 में हुए हादसे के बाद से लोगों में परमाणु ऊर्जा को लेकर जबरदस्त विरोध है। व्यापक विरोध के बावजूद जापान में बिजली कंपनियों ने 25 रिएक्टरों को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नीदरलैंड के जांचकर्ताओं को यूक्रेन में पिछले साल गिराए गए मलेशियाई विमान MH-17 के मलबे के पास मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ऐसी संभावना जताई गई है कि ये रूसी मिसाइल के टुकड़े हो सकते हैं। MH-17 विमान पर 298 लोग सवार थे और पिछले साल इस विमान को मार गिराया गया था। हालांकि रूस ने इस घटना से अपने किसी भी तरह से संबंध से इनकार किया है। चीन के केंद्रीय बैंक ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा युआन का अवमूल्यन कर इसे डॉलर के मुकाबले लगभग 3 साल के सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। बैंक के मुताबिक युआन के मूल्य में 1.9% की कमी का मकसद विनिमय दर को और अधिक बाजार के मुताबिक बनाना है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। संसद के मॉनसून सत्र में आज हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश करने की कोशिश की। इस बीच विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ये बिल पास हो, तो इसके जवाब में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि वे बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले सरकार उनकी मांग को स्वीकार करे। कांग्रेस मानसून सत्र के शुरू होने के साथ से ही सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे की इस्तीफे की मांग कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ जुबैर अहमद।
लोगों को देखने दो कि किस प्रकार का व्यवहार सांसदों का है। चेयर को टीवी पे दिखने का कोई शौक नहीं है। आप जरूर
लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के शोर शराबे पर स्पीकर सुमित्रा महाजन की नाराजगी। उन्होंने पिछले ही हफ्ते कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित किया था, लेकिन कांग्रेस के सांसदों का आक्रामक रुख आज भी जारी रहा। स्पीकर का कहना था कि ये लोकतंत्र की हत्या है।
प्रजातंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र नहीं है, जरूर आपको टीवी पे देखना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उच्च सदन में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस आर्थिक प्रगति के खिलाफ है।
एक केंद्रीय मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों का विषय तो एक बहाना था, कांग्रेस को केवल जीएसटी को रुकवाना था। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि देश के आर्थिक प्रगति नहीं चाहती, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उसकी कई नीतियां इस देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ बन गई थी, आज वो विपक्ष में रहकर भी बोझ बनना चाहती है।
कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जीएसटी बिल का जमकर विरोध कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो संसद में तब तक हंगामा जारी रखें जब तक विवादों में फंसे तीनों बीजेपी नेता यानी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान इस्तीफा ना दे दें। कांग्रेस का तर्क है कि पहले उनका इस्तीफा हो तब हम बिल पर बहस करेंगे। पार्टी नेता आनंद शर्मा कहते हैं, कांग्रेस बिल के खिलाफ नहीं है।
लेट मी मेक इट क्लियर, वी आर द ऑथर्स ऑफ द जीएसटी बिल।
आनंद शर्मा कह रहे थे कि वो साफ करना चाहते हैं कि जीएसटी बिल को उनकी पार्टी ने तैयार किया था। पार्टी बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को पहले उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं। ये थे आनंद शर्मा के विचार। जीएसटी बिल को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया है। इसे पास करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि अगले साल अप्रैल तक जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। संसद में मानसून का ये सत्र अब 2 दिनों में समाप्त हो रहा है। अगर राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया तो देश के 29 राज्यों में से आधे से अधिक की मंजूरी भी चाहिए। केंद्र सरकार के पास समय नहीं है। इस बिल के जरिए देश के अंदर सामानों और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बार ही टैक्स देना होगा। अलग अलग राज्यों के जरिए लगाए गए टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे, जैसा कि श्री जेटली कहते हैं।
चाहे जितनी गुड्स हैं, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो पूरे देश भर में खुले रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, जो कमजोर राज्य हैं उनको इससे और अधिक लाभ होगा, देश की जीडीपी से को भी लाभ होगा।
लेकिन इसके लागू होने के बाद भी 2 साल तक राज्य सरकारें 1% टैक्स लगा सकती हैं। इसके अलावा शराब और पेट्रोल को इससे अलग रखा गया है। यानी कांग्रेस ने बिल का जो मसौदा तैयार किया था उसके मुकाबले में ये बिल थोड़ा कमजोर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पारित होने के बाद देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज हो जाएगी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं होगा। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दोनों मकसद के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आधार कार्ड की जानकारी सरकारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगी। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता आधार कार्ड पर ही सवाल उठाते रहे हैं। हमारे सहयोगी रंजन ने मानवाधिकार कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से बात की और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों के लिए कितने काम का है।
सुप्रीम कोर्ट ने यदि दोबारा इस बात को दोहराया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है तो बिल्कुल इस देश के नागरिकों के हित में बोल रहे हैं कि किसी भी सरकारी सेवा या सरकारी एंटाइटलमेंट्स को लेने के लिए नागरिकों को आधार कार्ड को पेश करना या आधार नंबर को पेश करने को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में करोड़ों ऐसे इस देश के निवासी हैं जो आधार के तहत पंजीकृत नहीं है और इस वजह से उनको जो भी सरकारी सुविधाएं या लाभ हैं उनसे वंचित नहीं करना चाहिए।
इस बात के अलावा कि सबके पास ये भी नंबर नहीं है और अभी पहुंच रहा है, और क्या आपत्तियां हैं आप आधार कार्ड अनिवार्य बनाए जाने को लेकर के?
जी देखिए, सबसे पहले तो आधार की जो पूरी प्रणाली है इसको कानूनी वैधता अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। संसद ने कोई कानून पारित नहीं किया सरकार को ये अधिकार सौंपने के लिए कि वो नागरिकों से उनके निजी जानकारी को लेने के अधिकार हों, और फिर उनके उंगलियों के निशान को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, और फिर उनके जो आंख के जो आइरिस हैं उसका प्रिंट रिकॉर्ड करने का अधिकार है। इस तरह का कोई कानून सरकार को ये अधिकार नहीं देता। पिछले लोकसभा में कानून का विधेयक लाया गया था और संसद ने उसको नामंजूर कर दिया। संसदीय समिति ने कहा कि इसमें इस देश की जनता की निजता के अधिकार, उसकी सुरक्षा के प्रावधान नहीं है और ऊपर से जिस तंत्रज्ञान के आधार पर आधार की प्रणाली को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है वो अभी तक उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको पूरे विश्व में साबित नहीं किया गया है, खासकर आइरिस प्रिंट का रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में। तो जब अब उसके जवाब देने के बदले इस बार की जो एनडीए सरकार है वो आधार को सपोर्ट कर रही है और पूरे देश में लोगों को आधार के तहत पंजीकृत करने के लिए मजबूर कर रही है, ये कहते हुए कि अगर आप पंजीकरण नहीं करेंगे तो फिर आपको फला प्रकार के सुविधाएं नहीं मिलेंगे। तो ये जो मजबूरन लोगों को आधार के तहत पंजीकृत किया जा रहा है, मैं यही मानता हूं कि ये एक तरह से जबरदस्ती है जिसका अनुमति कोई भी कानून सरकार को नहीं दे।
एक जो दिक्कत होती है रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को अपना पहचान बताने की, उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, चाहे वो पासपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में हो या राशन कार्ड के रूप में हो, तो उस समस्या से निदान के रूप में इसको देखा गया था कि एक आपके पास आपकी पहचान या एक आपका पर्सनल नंबर है, आधार नंबर जिसको कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि ये दलील वाजिब है?
मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के नागरिक होने के नाते सबसे पहला प्रमाण पत्र जो नागरिकों का पहचान पत्र होना चाहिए वो है इस देश के मतदाता के रूप में और इस देश के नागरिक के रूप में। अब इस प्रकार के अगर कोई पहल की जाती है कि उनको सिटीजनशिप की आइडेंटिटी और उनको वोटर होने के नाते वो आइडेंटिटी देने का अगर बात किया जाए तो ये मान सकते हैं कि बिल्कुल ये कानूनी तौर पर ये वैध है और वो पहचान पत्र केवल इतना कहेगा कि ये फला व्यक्ति इस देश का नागरिक है और अगर 18 साल की उम्र से ऊपर है तो इस देश के चुनावों में मत डालने का अधिकार रखता है। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है कि लोगों को पहचान देने के आधार पर सरकार जो है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर रही है जो केवल उनके अपने व्यक्तिगत रूप की जानकारी नहीं है लेकिन उनके शरीर से संबंधित जानकारी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार को किसी व्यक्ति के निजता के ऊपर इतना बड़ा हमला करना चाहिए क्योंकि आज का जो दौर है ये नागरिकों को सरकार से जानकारी लेने का अधिकार वाला दौर है, ना कि सरकार को नागरिकों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके फिर उसका पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसका दुरुपयोग किस तरह से करेंगे, सबका डर यही है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से बात कर रहे थे निखिल रंजन। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सीबीआई के मुताबिक तीस्ता और उनके पति पर गैर सरकारी संस्था के जरिए विदेश से पैसे मंगाकर उन पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप है। सीबीआई के अनुसार तीस्ता को साल 2004 से 2008 के बीच अमरीका स्थित फोर्ड फाउंडेशन से $290,000 मिले थे। इस राशि के बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लेना चाहती है लेकिन अदालत उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। मैंने मुंबई फोन कर स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर से पूरी जानकारी मांगी।
कोर्ट ने आज सरकारी पक्ष की और तीस्ता सेतलवाड़ दोनों की दलीलें सुनने के बाद तीस्ता सेतलवाड़ को एक अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है। सरकारी पक्ष का ये कहना था कि 2002 में गुजरात दंगों में दंगा पीड़ित लोगों की मदद के लिए उन्होंने FCRA के उल्लंघन करते हुए विदेशों से चंदा इकट्ठा किया था जिसकी तफ्तीश फिलहाल सीबीआई द्वारा की जा रही है। उसके लिए सीबीआई की मांग ये थी कि उस मामले की आगे की जांच के लिए उनको हिरासत में दे दिया जाए। तीस्ता सेतलवाड़ के तरफ से ये दलील दी गई कि उनको जो भी पैसे मिले हैं, भारत के बाहर से जो भी पैसे उनको मिले हैं, वो चंदा नहीं था, वो अलग अलग किस्म की सेवाएं उन्होंने दी थी, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट हुआ है जिस पर उन्होंने TDS भी पे किया है। तो ये सब बातें सुनने के बाद कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि उनको हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी जितनी भी अब तक हियरिंग्स हुए वो खुद वहां पर मौजूद थी कोर्ट में, उन्होंने तफ्तीश करने वाली एजेंसीज के साथ कोऑपरेट भी किया है ठीक तरह से, तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत कोर्ट ने महसूस नहीं की और उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर दी।
जी अश्विन, तो अग्रिम जमानत अब कितने दिनों के लिए दी गई है और कैसे बढ़ेगी आगे की कार्रवाई?
नहीं, अब उसमें कितने दिन के लिए ऐसा उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। ₹20,000 के बॉन्ड पे उनको अग्रिम जमानत मिली है, तफ्तीश जारी रहेगी और तीस्ता सेतलवाड़ को जब भी जांच एजेंसी के अधिकारी बुलाएंगे तब जाना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, जो भी जानकारी वो मांगेंगे, जो भी कागजात वो मांगेंगे वो तुरंत मुहैया कराने होंगे। इन कंडीशंस पे उन्हें अग्रिम जमानत मिली है।
ये थे मुंबई से अश्विन अघोर। तो सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। ये थे अश्विन अघोर, जैसा कि मैंने बताया। और अहमदाबाद फोन कर मैंने अंकुर जैन से पूछा कि तीस्ता सीतलवाड़ पर पैसों के दुरुपयोग के जो आरोप लगे हैं उसे वहां कैसे देखा जा रहा है।
पूरा मामला जो है ये शुरू हुआ था जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पिछले साल जनवरी में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके हस्बैंड जावेद आनंद और एक और उनके एनजीओ में वर्कर के खिलाफ कंप्लेन दायर की थी कि गुलबर्ग सोसाइटी के जो लोग थे इन लोगों ने ये कहा था कि हम आपकी सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाएंगे और उसके लिए जो पैसा होगा आपके मकान बिकेंगे और जो पैसा हम इसके लिए जुटाएंगे वो पैसे का शेयर आपको मिलेगा। उसके बाद में 2013 में इन्होंने अहमदाबाद कमिश्नर को लिखा कि हमें अब तक कोई पैसा नहीं मिला है और हमारे नाम पे जो भी पैसा जुटाया गया है वो पैसा हमें नहीं मिला है, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कंप्लेन फाइल की थी। और बाद में कंप्लेन में तीस्ता सीतलवाड़ और एनजीओ का ये कहना है कि हमने सिर्फ टोटल कुछ 4.5 लाख रुपए जमा किए थे जो अभी तक अनयूज्ड है और ये म्यूजियम बनाने का प्लान क्योंकि पैसा नहीं जुटा पाए इसलिए म्यूजियम नहीं बनेगा। तो अब इस बात पे जो 12 लोगों ने लेटर साइन किया था वो इस मामले पे अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आज का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एक बार उनको मुहैया होगा कि जो एंटीसिपेटरी बेल है और कोर्ट से जो रिमार्क्स है स्पेशली जो ये एफसीआर जो डोनेशन मिला है और डोनेशन में कितने पैसे मिले और उसमें से कितने पैसे उन्हें मिलने चाहिए थे ये देख के वो इस चीज पे प्रतिक्रिया देंगे। ये जो एंटीसिपेटरी बेल का जो मुकदमा था इसको गुजरात पुलिस बड़ी करीबी से देख रही थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर आज कोर्ट से इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो शायद इस मामले में आज ही गुजरात पुलिस इन्हें अरेस्ट कर सकती है। इस तरह की बातें भी यहाँ हो रही थी, लेकिन चूंकि अब आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होगा, ये बेल कितने दिनों के लिए मिली है और कितने दिनों तक इनके पास ये इम्यूनिटी है ये देखा जाएगा। लेकिन ये गुजरात पुलिस ये मान रही है कि जो आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की वो जीत मान रही है कि अगर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो जो अब तक आरोप लगाए जा रहे थे कि गुजरात पुलिस ने विच हंटिंग की है वो आरोप सारे खारिज हो जाते हैं।
ये थे अहमदाबाद से अंकुर जैन। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में कल रात से जारी मुठभेड़ में 2 स्थानीय चरमपंथी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव किया। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ के एक नए गढ़ के तौर पर उभर रहा है। पिछले कुछ सालों से इन क्षेत्रों से पढ़े लिखे लोग चरमपंथी गुटों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को सबसे ज्यादा सीटें दक्षिणी कश्मीर से ही मिली थी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
ये मुठभेड़ दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में रत्नीपोरा गांव के निकट हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कल रात ही इन्हें चरमपंथियों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी और तुरंत इलाके को घेरे में ले लिया गया, लेकिन रात भर लड़ाई जारी रही और आज दोपहर को पुलिस ने दावा किया कि इसमें पुलवामा के ही गुलजार भट्ट और शौकत लोन नाम के 2 कुख्यात चरमपंथी मारे गए। गुलजार भट्ट के बारे में पुलिस ने बताया कि वो मस्जिदों में जुमा के रोज धार्मिक उपदेश देते थे और इनके साथी शौकत ने 8 महीने पहले ही बंदूक उठाई थी। मुठभेड़ के दौरान लोगों ने एनकाउंटर की जगह प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने इनको तितर-बितर कर दिया। पुलिस कार्रवाई में एक नागरिक घायल हो गया। इस ऑपरेशन में पुलिस की टास्क फोर्स का एक जवान भी घायल है। गौरतलब है कश्मीर के दक्षिणी जिलों में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस के मुताबिक जुलाई से अब तक यहां 7 ऐसी लड़ाइयां हुई जिनमें पुलिस, अर्धसैनिक, सीआरपीएफ और सेना ने साझे ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशनों में 7 स्थानीय चरमपंथी मारे गए। जब भी स्थानीय चरमपंथी किसी मुठभेड़ में फंसते हैं तो गांव वाले प्रदर्शन करते हैं और बाद में इनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इंटेलिजेंस के एक अफसर ने बीबीसी को बताया कि दक्षिणी कश्मीर में इस वक्त कुल 60 चरमपंथी सक्रिय हैं, जिनमें से 30 ने इसी वर्ष ये रास्ता अपनाया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और शोपियान जिलों में इस तरह की घटनाएं अब आए रोज घटती हैं। पिछले हफ्ते जम्मू में एक हमले के दौरान एक चरमपंथी मारा गया और एक को जिंदा पकड़ा गया। नवीद नामी इस चरमपंथी के बारे में पुलिस ने बताया कि वो पाकिस्तानी है। मामले की तफ्तीश अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। इस सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
भारत में जन्मे सुंदर पिचाई को सर्च इंजन गूगल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। चेन्नई में जन्मे पिचाई के पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे और पिचाई को बचपन से ही गैजेट्स का शौक रहा है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव से मैंने सुंदर पिचाई के बारे में और जानकारी मांगी।
सुशीला, सुंदर पिचाई जो हैं वो चेन्नई के वनवाड़ी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र रहे। उनके पिताजी जो थे वो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ जो थी वो स्टेनोग्राफर थी। तो बहुत सामान्य सा उनका जीवन बीता है भारत में जब तक थे वो तमिलनाडु में। वो क्रिकेट के बड़े प्रेमी रहे बचपन से। उन्होंने अपने कॉलेज स्कूल की जो हाई स्कूल टीम थी उसको तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट भी जितवाने में मदद की। बड़े पैशनेट रहे क्रिकेट को लेकर। उसके बाद वो अपनी स्कूल की शिक्षा करके IIT खड़गपुर गए। IIT खड़गपुर जाने के बाद से उन्होंने पढ़ाई लिखाई तालीम के स्तर पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहाँ से वो सीधे स्टैनफोर्ड गए। स्टैनफोर्ड जो अपने आप में नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने और इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में और हायर डिग्री MS की ली और उसके बाद से वो दुनिया के सबसे जो नामचीन MBA कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वॉर्टन स्कूल का नाम आता है, वो वॉर्टन स्कूल गए, वहाँ से उन्होंने MBA किया। तो एक तरह से एक सामान्य से बैकग्राउंड परिवेश से उठते उठते उठनी शिक्षा के दम पर वो एकदम ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने तालीम अपनी ख़त्म की, जिसके बाद आपके सामने जिसको कहते हैं स्काई इज द लिमिट।
नितिन सुंदर का जो इंटरव्यू छपा है उसमें हमने ये पढ़ा कि वो कहते हैं कि लो प्रोफाइल उन्होंने मेंटेन रखी अपने करियर में, लेकिन काम और मेहनत लगन के साथ वो करते रहे, उनकी सफलता का फंडा यही रहा है। तो उनके बारे में बताइए कि उनका करियर कैसे परवान चढ़ा।
देखिए, जब वो अमरीका गए पढ़ाई करने और जाहिर है उसके बाद अमरीकी सिस्टम से वो वाकिफ हुई, उसके बाद उन्होंने जो अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की वो कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्जी, बहुत मशहूर कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। और मुझे लगता है कि सुंदर पिचाई का जो करियर ग्राफ है वो इसलिए बेहतरीन इतना रहा क्योंकि वो शुरू से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रहे, यानी कि उनको तमाम कंपनियों में जहाँ जहाँ वो रहे उनमें एक किसी चीज़, एक प्रोडक्ट को जो है डेवलप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जैसा उन्होंने आपने कहा, उन्होंने खुद कहा, वो बहुत फोकस्ड रहे हमेशा अपने काम को लेकर। मैकिन्जी के बाद वो एक बड़ी कंपनी के तौर पर 2004 में गूगल में आए, और गूगल ये वो ज़माना था जब इंटरनेट सर्च के मामले में गूगल का कोई सानी नहीं था, हालांकि आज भी नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद उनको गूगल क्रोम या गूगल के जो एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स थे या जो जीमेल है जो आज की तारीख में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिले और वो एक एक प्रोडक्ट को डेवलप करते गए। पहली बार आप हैरान हो जाइएगा ये बात जानकर कि दुनिया में लाइमलाइट में वो तब आए जब वो गूगल ऐसी बड़ी कंपनी के ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थे और एंड्रॉयड जो प्रोडक्ट था, एंड्रॉयड वो है तकनीक होती है जिससे आजकल मोबाइल फोन चलते हैं, चाहे 2000 का हो चाहे 25 का चाहे 50 का, वो एंड्रॉयड के लॉन्च में जब भारत आए या अमेरिका में उन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू किए, तब लोगों को लगा अरे तो सुंदर पिचाई है और ये तो अब गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन सकते हैं। तो इतनी लो प्रोफाइल के आदमी रहे हैं, बहुत परिवार वाले आदमी बताए जाते हैं, परिवार के प्रति खास उनका स्नेह है, उनकी एक पत्नी अंजलि, उनके एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, और बहुत बहुत लो प्रोफाइल लगते हैं। लेकिन उनकी याददाश्त के बारे में लोग कहते हैं, 1984 में शायद उनके घर में जब पहली बार फोन आया, तो उस जमाने में कम फोन थे तो उनके रिश्तेदारों को नंबर याद रखने में दिक्कत होती थी, तो वो लोग सुंदर पिचाई को फोन करके किसी दूसरे का नंबर पूछते थे, उनकी याददाश्त इतनी तेज थी, और शायद वही आज उनको गूगल के CEO के पद तक ले गई।
ये थे नितिन श्रीवास्तव। और अब विशेष रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना से निकलने वाले 141 साल पुराने अखबार बिहार हेराल्ड फिर से शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1874 से शुरू हुआ ये भारत का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। हालांकि अखबार के शुरुआती दिनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बाद के दिनों में अखबार ने बिहार के समाज में जनमत तैयार करने में अहम भूमिका अदा की थी। पटना से सीटू तिवारी की ये रिपोर्ट।
सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के वायदे के साथ 141 साल पुराना बिहार हेराल्ड फिर से शुरू हो गया। ढाका से पटना आकर बसे गुरुप्रसाद सेन ने 1874 में इस अखबार को साप्ताहिक अखबार के तौर पर शुरू किया था। गुरुप्रसाद सेन लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य थे। 1938 में बिहार में बसे बंगालियों ने जब अपना संगठन बनाया तो अखबार के प्रकाशन की जिम्मेदारी बंगाली एसोसिएशन बिहार को सौंप दी गई। 110 साल तक ये अखबार छपता रहा, लेकिन डामाडोल आर्थिक परिस्थितियों के चलते 1987 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। अखबार के बारे में बिहार के बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिन्हा बताते हैं।
पटना से छपने वाली भारत की सबसे पुरानी साप्ताहिक पत्रिका थी, ये अंग्रेजी माध्यम में छपती थी और 1874 में शुरू हुई थी श्री गुरुप्रसाद सेन से। वो यहाँ लैंड ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उन्हें लगा था कि अपनी बात ब्रिटिश राज के पास पहुंचाने के लिए उनकी अपनी एक पत्रिका होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बिहार हेराल्ड बनाया। उस वक्त उसकी मुख्य मुद्दा थी सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये उनके पहले पेज में सबसे बड़े बड़े अक्षर में लिखे रहते थे।
अखबार के शुरुआती दिनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के आर्काइव में मौजूद 1922 के बाद के अखबारों से पता चलता है कि अखबार ओपिनियन मेकर यानी किसी मसले पर राय बनाने का काम अपने संपादकीय के जरिए करता था। अखबार में घटनाओं की रिपोर्टिंग कम होती थी, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर संपादकीय खूब लिखे जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि अखबार का रुझान बहुत ज्यादा आज़ादी के आंदोलन की तरफ रहा हो। अखबार लोगों, खासकर बंगाली भाषियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। अखबार से 1974 में बतौर एडवर्टाइजिंग मैनेजर जुड़े विश्वनाथ देव अखबार की लोकप्रियता के बारे में बताते हैं।
बहुत सारे सदस्य जो है, अगर डाक से अगर नहीं मिलता था तो हम लोग के यहाँ ऑफिस में आकर लोग कलेक्ट करते थे, और बहुत पॉपुलरिटी था, बिहार एडल बहुत पॉपुलरिटी था, क्योंकि इसमें जो रिपोर्टर वगैरह जो थे उस समय बहुत अच्छा लेखन था, अच्छे रिपोर्टिंग करते थे, विधानसभा का रिपोर्टिंग लिखते थे, जो रोज जो दैनंदिन जीवन का जो होता था असर वो भी लिखते थे।
अखबार को अब पाक्षिक अखबार के तौर पर शुरू किया गया है। अखबार की खबरों के केंद्र में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं। फिलहाल अखबार के 700 ग्राहक बन गए हैं। वहीं कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ से अखबार की प्रतियों की मांग होने लगी है। अखबार को 2015 में शुरू करने के मकसद के सवाल पर बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिन्हा कहते हैं कि मुख्यधारा के अखबार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं को आवाज देने में सफल नहीं रहे हैं।
जब तक कोई पत्रिका अल्पसंख्यकों के माध्यम से नहीं आता है तब तक इनकी बात पूरा उठाई नहीं जाएगी। अगर आप कहें बिहार हेरल्ड में किसके बारे में खबर रहेगा, तो मैं सोचता हूँ कि 75% खबर जो बिहार हेरल्ड में रहेगी वो अल्पसंख्यकों की रहेगी, बाकी 25% में बाकी को मैं हम लोग इसे लाने का कोशिश करेंगे। और जो बड़े बड़े मुख्य मुद्दा लिए हुए जो पत्रिकाएं चल रही हैं, वो 75% उनका जो अंश है वो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है।
ये अखबार मुख्यधारा की मीडिया पर एक बड़ा सवाल भी है, जो आबादी के बड़े हिस्से और उसकी समस्याओं को नजरअंदाज करती है। फिर बात चाहे बिहार में बसे अल्पसंख्यकों की हो या फिर उत्तर पूर्व की समस्याओं की। सीटू तिवारी, BBC, पटना।
आपको सीटू तिवारी की ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखेगा। और अब समय खेल समाचारों का। और हमारे साथ लाइव स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, ये बताइए कि विश्व बैडमिंटन शिप चैंपियनशिप चल रही है इंडोनेशिया में, भारत का क्या हाल है?
जी देखिए, वहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने मिला जुला प्रदर्शन किया। 11वीं वरीयता हासिल भारत की PV सिंधु और 3री वरीयता हासिल के श्रीकांत ने जीत के साथ शुरुआत की। महिला एकल वर्ग में दो बार के कांस्य पदक विजेता PV सिंधु ने डेनमार्क की लेन जॉसफेल्ड को 11-21, 21-17, 21-16 से बात दी। पुरुष एकल वर्ग में के श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल फ्रीमैन को 21-10, 21-13 से हराया। लेकिन पुरुष युगल वर्ग में भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी चीन के काई युन और लू काई की जोड़ी से 21-19, 21-7 से हार कर बाहर हो गई। इनके अलावा महिला युगल वर्ग में भारत की धान्या नायर और मोहिता सचदेव की जोड़ी फ्रांस की डेल्फिने लासांग और एमिले लेफिल की जोड़ी से 21-18, 21-16 से हार कर बाहर हो गई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल हांगकांग की यी चुंग नगान का सामना करेंगी। वहीं इन दिनों यूरोप का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम को स्पेन के हाथों 4-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत ने फ्रांस के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते थे। भारत के लिए एकमात्र गोल SV सुनील ने किया। भारत स्पेन के खिलाफ अपना दूसरा मैच कल खेलेगा। उधर भारत के प्रकाश नजम्पा ने अजरबैजान में ISSF विश्व कप की 50 मीटर पुरुष पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहकर अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक्स में जगह बना ली है, और वे भारत के ऐसे छठे निशानेबाज हैं जिन्होंने रियो का कोटा हासिल किया है। उधर भारत और श्रीलंका के बीच कल से गोल में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। आंकड़ों में अभी तक दोनों टीमों के बीच 35 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 14 और श्रीलंका ने 6 टेस्ट मैच जीते हैं। देखना है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है।
खेल समाचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच आज सरकार ने GST विधेयक पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आधार कार्ड का इस्तेमाल PDS और LPG सब्सिडी के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं होगा। ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के साथ तीसरे बेलआउट समझौते के लिए तैयार हो गया है। जापान ने फुकुशिमा हादसे के बाद बंद पड़े रिएक्टरों में से एक को आज फिर से चालू कर दिया। नीदरलैंड के जांचकर्ताओं को यूक्रेन में पिछले साल गिराए गए मलेशियाई विमान MH-17 के मलबे के पास मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ऐसी संभावना जताई गई है कि ये रूसी मिसाइल के टुकड़े हो सकते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 घटना चक्र में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।